शुक्ला निवास में सभी ने सुबह का नाश्ता करने के बाद साथ बैठे थे। पिछले दिनों से सभी को अभिजीत जी के फोन और उनके जवाब का इंतजार था। जितेंद्र जी दो बार फोन भी कर चुके थे, पर अब भी कोई हाँ या ना का स्पष्ट जवाब नहीं आया था उनके तरफ से, जिसके कारण अहाना की नैया बीच मझधार में अटकी हुई थी। इनकार होता तो अगला रिश्ता देखते, पर अभी ये भी नहीं कर सकते थे। पर जैसे जैसे इंतजार लंबा होता जा रहा था, इस रिश्ते से उनकी उम्मीद टूटती जा रही थी। वक्त बेवक्त आजकल उनके बीच यही बातें हुआ करती थी, और आज भी जब सब साथ बैठे तो यही बात उठी। पापा, अब भी उनके तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। दो दिन का कहा था और अब एक हफ्ता होने वाला है, वो बात को बस टालते जा रहे हैं। न तो हाँ कहते हैं और ना ही इनकार करते हैं, पर ऐसे तो बात नहीं बनेगी। आप उनसे फ़ोन करके सीधे से कहिए कि हमें साफ साफ जवाब दें कि उन्हें ये रिश्ता करना है या नहीं। उनके आस पर बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो इनकार करते हैं तो हम अहाना के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढेंगे। दृशांत बेहद गंभीर था और बात भी ऐसी ही थी। सही कह रहा था, आखिर कब तक वो उनके इंतज़ार में बैठे रहते। उन्हें कोई ना कोई फ़ैसला तो लेना था, जिसके लिए दूसरी तरफ से स्पष्ट जवाब आना ज़रूरी था। मामले की गंभीरता और उसकी बातों को समझते हुए जितेंद्र जी ने माथे पर बल डालते हुए विचलित स्वर में कहा, बेटा, हम आपकी बात समझते हैं, पर आप भी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लड़की वाले हैं, पहले ही दो बार उनसे पूछ चुके हैं। हमारा ऐसे बार बार फोन करना ठीक नहीं होगा। इससे उन्हें लगेगा कि हम अपनी बेटी की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाने को बहुत बेताब हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बार बार फोन करने पर वो सोचे कि हमारी बच्ची में कोई कमी है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी उनकी शादी कर देना चाहते हैं। हमें धैर्य से काम लेना होगा, वरना बात बिगड़ सकती है और इससे अनु पर भी सवाल उठ सकते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पापा, पर वो भी तो समझे ना। न तो हाँ कह रहे हैं और ना ही इनकार कर रहे हैं। बीच मझधार में लटकाया हुआ है हमें। फैसला बताने के बजाय बात को टालते जा रहे हैं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उन्हें इस रिश्ते और हमारी अनु में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे में हम कब तक बिना किसी उम्मीद के उनके जवाब का इंतजार करते रहें। दृशांत ठीक कह रहे जी, उस दिन रूपाली जी का व्यवहार हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हमें तो उसी दिन से शंका थी कि शायद उनकी ओर से इनकार ही होगा और इसलिए वो इतने दिनों से बात टाल रहे हैं, वरना अब तक जवाब दे चुके होते। जयंती जी ने भी दृशांत की बात का समर्थन किया। अंतरा, जो खामोशी से सबकी बातें इतने दिनों से बस सुनती ही आ रही थी, आज उसने भी अपना मुंह खोल ही दिया। पापा, मुझे तो लगता है कि हमें नंबर में लगाकर वो वहाँ दूसरी लड़कियाँ देखने लगे हैं, तभी हमें जवाब नहीं दे रहे, वरना फैसला लेने में इतने दिन लगते हैं। मैंने भी देखा था, वो आंटी बहुत चिड़ी हुई सी लग रही थी, जैसे इस रिश्ते से खुश ना हों। शायद उन्हें रिश्ता करना ही नहीं, इसलिए बात टालते जा रहे हैं। बिना किसी उम्मीद के उनके भरोसे बैठना बेवकूफ़ी होगी। आप अगर उन अंकल को फ़ोन नहीं करना चाहते तो मामू से बात कीजिए, वो तो अंकल को जानते हैं, वो उनसे बात कर लेंगे। आपके मामा जी ने ही कुछ दिन इंतज़ार करने को कहा है। इस बारे में हमारी उनसे कल ही बात हुई है। उनका कहना है कि ऐसा रिश्ता और ऐसा लड़का अनु के लिए हमें दूसरा नहीं मिलेगा। उनके परिवार में सब बहुत अच्छे और मिलनसार हैं, पर बहन जी थोड़ी सख्त मिजाज हैं, पर दिल की वो भी बुरी नहीं है। हमारी अनु उस घर जाएगी तो खुश रहेगी, इसलिए जल्दबाजी में बात बिगड़ने से अच्छा होगा कि थोड़ा सब्र करें, वो एक दो दिन में जवाब दे देंगे। सिर्फ मिजाज सख्त नहीं है पापा, वो आंटी बहुत खड़ूस है और उतनी ही घमंडी भी है। मुझे तो वो ज़रा भी पसंद नहीं आई। अगर जीजी की शादी उस घर में हो गई तो देखना, वो बहुत सताएंगी जीजी को। रूपाली जी को याद करते हुए अंतरा ने बुरा सा मुंह बनाया और साथ में अहाना के लिए अपनी चिंता भी जाहिर कर दी। उसकी बात पर जयंती जी ने उसे बड़ी ही प्यार से समझाया, बेटा, सास ऐसी ही होती हैं। सास के रूप में माँ बहुत कम खुश नसीब लड़कियों को नसीब होती हैं, और लड़कियों को रिश्तों में तालमेल बिठाकर त्याग करके रिश्तों को निभाना होता है। ये सब समझने के लिए अभी तुम छोटी हो, पर अभी इतना समझ लो कि सास ससुर कुछ वक्त के लिए होते हैं, और अगर जीवन साथी अच्छा हो, आपका साथ दे, तो रिश्ते निभी जाते हैं। अक्षय जी बहुत समझदार, शांत और सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। वो हर तरह से हमारी अहाना के काबिल हैं, और उस परिवार में रूपाली जी को छोड़कर सबका स्वभाव मिलनसार है और सभी मृदुभाषी हैं। अगर अहाना उस घर की बहू बनेंगी तो उनके नसीब खुल जाएंगे। इसलिए महादेव से प्रार्थना करो कि वो हाँ बोल दें, वरना ऐसा लड़का हमारी अनु के लिए फिर नहीं मिलेगा। अपनी माँ की बात सुनकर अंतरा ने मुंह बना लिया। अहाना, जो अब तक खामोश बैठी सबकी बातें सुन रही थी, अब उसके लिए यहाँ बैठना दुश्वार हो गया। अपने कारण इतने दिनों से वो सबको परेशान होते देख रही थी, जिससे उसे खुद को बहुत तकलीफ होती थी। इस वक्त उसे एहसास हो रहा था कि बेटी चाहे कितनी ही काबिल क्यों ना हो, अपनी ज़िंदगी में कामयाब क्यों ना हो जाए, पर जब तक माता पिता उसका विवाह नहीं कर देते, उन्हें उसकी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिल जाती। वो उनकी चिंता का ही कारण बनती है, और माता पिता के दिल को सुकून उस दिन ही मिलता है जब वो अपनी बेटी का हाथ एक काबिल शख्स के हाथों में सौंप कर उसे इज्जत से अपने घर आंगन से विदा कर दें। माँ, हमें कल की क्लास की तैयारी करनी है, हम अपने कमरे में जाएँ? अहाना बड़ी ही विनम्रता से उनके जाने की आज्ञा मांग रही थी। जयंती जी समझ रही थी कि पिछले कुछ दिनों से सबके साथ वो भी परेशान है, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। अहाना उठकर अपने कमरे में चली आई, कुछ देर बालकनी में अकेली खामोश बैठी रही, फिर अपना फ़ोन उठाया और उसमें अक्षय की तस्वीर निकालकर देखने लगी। बीते दिनों में ऐसा एक दिन नहीं गया होगा जब उसने इस तस्वीर को कुछ पल खामोशी से न निहारा हो। जब फोटो मिली थी तब तो इतने ध्यान से नहीं देखा था, पर अक्षय से हुई मुलाकात के बाद उसने उसकी फ़ोटो को बहुत ही गौर और बारीकी से देखा था। जिम में बनाई बॉडी नहीं थी, पर डॉक्टर था और खुद को फिट रखा हुआ था। गठीले बदन पर हल्के आसमानी रंग की फिटिंग की शर्ट, जिसकी स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था, कॉलर के दो बटन खोले हुए थे और नीचे डार्क ब्लू जीन्स, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, करीने से सेट किए बाल जो शायद हवा से बिखर कर उसके माथे पर आ गए थे, आत्मविश्वास से भरा गंभीर चेहरा और लबों पर सजी मंद मुस्कान, गजब का कॉम्बिनेशन था। उसके व्यक्तित्व में अलग ही आकर्षण था जिसका असर अहाना पर भी होने लगा था। अहाना ने उस दिन से ही हर पल खुद को समझाया था कि इस रिश्ते से कोई उम्मीद न रखे, पर फिर भी अक्षय से हुई उस मुलाकात में अक्षय की बातें सुनने और उसके व्यवहार को देखने के बाद उसके दिल के किसी कोने में एक उम्मीद सांस लेने लगी थी। जिस तरह से अक्षय ने उससे पूछा था कि दहेज न लेने पर क्या उसकी हाँ होगी, अहाना के मन में न चाहते हुए भी एक आस बन गई थी। अक्षय जाने अनजाने में ही उसके दिल पर दस्तक दे गया था, अपने व्यक्तित्व के आकर्षण जाल में उसे बांध गया था। जब जब अहाना वो लम्हा याद करती, जब बिना किसी बात की परवाह किए अपने अहम को त्याग कर सहजता से उसके कदमों के पास बैठकर उसकी साड़ी ठीक की थी, उसके दिल की धड़कनें थम जाती और कुछ अलग से एहसास उसे व्याकुल कर जाते। अनचाहे तौर पर ही अक्षय का ख्याल उसके मन में आता और जहन में उसके साथ बिताए वो पल घूम जाते।
ये जो उम्मीद की नाजुक डोर वो उस दिन से थामे जवाब का इंतजार कर रही थी, उसके बढ़ते इंतजार के साथ वो डोर भी उसके हाथ से फिसलती जा रही थी। जो आस अक्षय की बातों और व्यवहार के कारण आज भी जिंदा थी, अब नाउम्मीदी तले दम तोड़ने लगी थी। अक्षय की तस्वीर को देखते हुए यही सब बातें उसके जहन में घूम रही थी और अपने ख्यालों में गुम उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी आंखें नम हो गईं। जब आंखों की नमी गालों पर फिसली और गाल पर गीलेपन का एहसास होने पर अहाना चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई, उसने तुरंत अपने गाल को अपनी हथेली से छुआ तो वही गीलापन उसकी उंगली पर भी लग गया। ये देखकर वो हैरान थी, उसने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लिया, हाथ उस तस्वीर को डिलीट करने को आगे बढ़े, पर फिर दिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अहाना ने फोन बंद करके रख दिया और खुद कमरे में चली आई, मन बहलाने के लिए नॉवेल उठाई और पढ़ने बैठ गई, पर मन नहीं लगा। कुछ देर बाद नॉवेल भी बंद करके रख दी और दराज में रखी अपनी डायरी निकालकर वापस बालकनी में चली आई, उंगलियों में पेन फंसाए काफी देर तक कुछ सोचती रही, फिर अपनी आंखों को मूंद लिया। अक्षय चुपके से उन बंद पलकों के भीतर समा गया और उसकी आंखों में अपना अक्स देखकर मुस्कुराया, साथ ही अहाना के लब भी मुस्कुराए। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और उंगलियों के बीच फंसा पेन उस कोरे पन्ने पर उसके अनकहे जज्बाती को उकेरने लगी। कुछ अनकही सी अनुभूतियां मुझे तुझसे जोड़ती हैं, जिंदगी की हर राह जैसे मुझे तेरी ओर मोड़ती है, ये इंतजार की घड़ियां हर लम्हा मेरा सब्र दौड़ती हैं। लाख समझाया मैंने खुद को कि तेरा मेरा साथ मुमकिन नहीं, पर तुझसे पुनः मिलन की आस साथ न छोड़ती है। वो लफ्ज, वो अल्फाज जो तूने कहे थे, वो तेरी निगाहों के सितम जो हमने खामोशी से सहे थे, वो पहला लम्हा जब तूने हमें छुआ था, उस लम्हे में कुछ अलग सा एहसास हमें हुआ था। दिल की धड़कनें बढ़ी थी, सांसें भी कुछ चढ़ी थीं, पलके हयासी झुकी थीं, कायनात भी पल भर को रुकी थी। वो एहसास, वो जज्बात हमें अब भी याद हैं, तो साथ ना होकर भी जैसे हर लम्हा मेरे पास है। निगाहें हर रोज तुझे तकती हैं, पलकों तले तेरी मोहक छवि बसती है, जब जब तेरे अधर मुस्कुराते हैं एक मुस्कान मेरे लबों पर सजती है। जाने ये कैसे एहसास है, लगता है तू हमें हमारे अपनों सा खास है, जैसे कोई रिश्ता सा जुड़ा है तुझसे, एक बंधन से बंधा है तू मुझसे, जिसका कोई नाम न कोई पहचान, बस है तो कुछ अनकहे एहसास और अधूरे से ख्वाब।